This is the University of Cambridge Local Examination Syndicate, International General Certificate of Secondary Education, June 2008 examination in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
कृपया ध्यान दें, कल रात बनिहाल दर्रे पर भारी बर्फ पड़ने के कारण जम्मू कश्मीर राजमार्ग बंद हो गया है. इसके कारण जम्मू से श्रीनगर जाने वाली बस सेवाएं कल तक के लिए बंद कर दी गई हैं. यात्रियों से निवेदन है कि अपने अपने घरों को लौट जाएं और अगली सूचना की प्रतीक्षा करें.
क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ?
जी, मुझे शहर का एक नक्शा चाहिए.
नक्शे तो कई तरह के हैं हमारे पास, पूरे महानगर का, नगर केंद्र का, मेट्रो और बसों का. आपको कैसा चाहिए?
ऐसा हो जिसमें पर्यटन स्थलों और मेट्रो स्टेशनों की जानकारी हो.
ये लीजिए, इसमें सभी कुछ है और कीमत भी केवल 20 रुपए.
धन्यवाद.
नमस्कार. नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस में सभी यात्रियों का स्वागत है. हमारा पहला पड़ाव कानपुर सेंट्रल में होगा. नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल तक की 405 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे 50 मिनट में तय की जाएगी. यात्रियों से निवेदन है कि धूम्रपान न करें. नमस्कार मराठा मंदिर.
जी नमस्कार, क्या आप बता सकते हैं आज शाम 6:30 बजे के फिल्म शो के टिकट मिल रहे हैं या नहीं?
जी नहीं, 6:30 बजे का शो तो फुल है, लेकिन रात 9 बजे के टिकट मिल रहे हैं.
क्या आप हमारे लिए 2 टिकट बुक कर सकते हैं?
माफ कीजिए, बुकिंग तो बंद हो चुकी है. आपको यहीं आकर खरीदने होंगे.
नमस्कार, नई दिल्ली के 18वें विश्व पुस्तक मेले में आपका स्वागत है. इस वर्ष के पुस्तक मेले में 40 से अधिक देशों के प्रकाशक भाग ले रहे हैं. मेले में युवाओं और हिंदी पाठकों के लिए विशेष पंडाल बनाए गए हैं जो मेले के मध्य परिसर में हैं. अधिक सूचना के लिए प्रवेश द्वार के पास बने सूचना केंद्र से संपर्क करें. भाई साहब, हमें गेटवे ऑफ इंडिया जाना है, क्या आप बता सकते हैं किस तरफ पड़ेगा?
है तो बिल्कुल सामने इसी सड़क पर, लेकिन आपको काफी चक्कर काट कर जाना पड़ेगा क्योंकि ये सड़क आगे से वन वे हो जाती है. तो ऐसा कीजिए, सामने की लाल बत्ती से बाएं मुड़कर अगली लाल बत्ती से दाएं मुड़ जाइए. सामने दिखाई देगा।
धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, कल रात बनिहाल दर्रे पर भारी बर्फ पड़ने के कारण जम्मू कश्मीर राजमार्ग बंद हो गया है। इसके कारण जम्मू से श्रीनगर जाने वाली बस सेवाएं कल तक के लिए बंद कर दी गई हैं। यात्रियों से निवेदन है कि अपने अपने घरों को लौट जाएं और अगली सूचना की प्रतीक्षा करें।
क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ?
जी, मुझे शहर का एक नक्शा चाहिए।
नक्शे तो कई तरह के हैं हमारे पास, पूरे महानगर का, नगर केंद्र का, मेट्रो और बसों का। आपको कैसा चाहिए?
ऐसा हो जिसमें पर्यटन स्थलों और मेट्रो स्टेशनों की जानकारी हो।
ये लीजिए, इसमें सभी कुछ है और कीमत भी केवल 20 रुपए।
धन्यवाद।
नमस्कार। नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस में सभी यात्रियों का स्वागत है। हमारा पहला पड़ाव कानपुर सेंट्रल में होगा। नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल तक की 405 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे 50 मिनट में तय की जाएगी। यात्रियों से निवेदन है कि धूम्रपान न करें। नमस्कार मराठा मंदिर।
जी नमस्कार, क्या आप बता सकते हैं आज शाम 6:30 बजे के फिल्म शो के टिकट मिल रहे हैं या नहीं?
जी नहीं, 6:30 बजे का शो तो फुल है, लेकिन रात 9 बजे के टिकट मिल रहे हैं।
क्या आप हमारे लिए 2 टिकट बुक कर सकते हैं?
माफ कीजिए, बुकिंग तो बंद हो चुकी है, आपको यहीं आकर खरीदने होंगे।
नमस्कार, नई दिल्ली के 18वें विश्व पुस्तक मेले में आपका स्वागत है। इस वर्ष के पुस्तक मेले में 40 से अधिक देशों के प्रकाशक भाग ले रहे हैं। मेले में युवाओं और हिंदी पाठकों के लिए विशेष पंडाल बनाए गए हैं जो मेले के मध्य परिसर में हैं। अधिक सूचना के लिए प्रवेश द्वार के पास बने सूचना केंद्र से संपर्क करें। भाई साहब, हमें गेटवे ऑफ इंडिया जाना है, क्या आप बता सकते हैं किस तरफ पड़ेगा?
है तो बिल्कुल सामने इसी सड़क पर, लेकिन आपको काफी चक्कर काट कर जाना पड़ेगा क्योंकि ये सड़क आगे से वन वे हो जाती है। तो ऐसा कीजिए, सामने की लाल बत्ती से बाएं मुड़कर अगली लाल बत्ती से दाएं मुड़ जाइए, सामने दिखाई देगा।
धन्यवाद। अभ्यास 2, प्रश्न 7 से 12। सुनीता रानी पंजाब की एक मशहूर एथलीट हैं। रेडियो चटनी के संवाददाता समीर साहनी ने सुनीता रानी से हाल ही में एक बातचीत की। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और पूछी गई जानकारी को नीचे दिए खाली स्थानों में भरिए। यह बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी।
नमस्कार, मैं हूं समीर साहनी। आज हमारी मेहमान है सुनीता रानी, जिन्होंने दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुए सन 2002 के एशियाई खेलों में 1500 मीटर की दौड़ का एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। सुनीता जी, रेडियो चटनी के सुनने वालों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले तो यही बताइए कि आप पुलिस की वर्दी में क्यों हैं?
क्योंकि मैं पंजाब पुलिस की नौकरी करती हूँ। जब मैं दौड़ती थी तब भी पंजाब पुलिस में थी, और अब तो दौड़ना भी छोड़ दिया है, इसलिए अब पुलिस अफसर बन गई हूँ।
यानी अब आप अपराधियों के पीछे दौड़ती हैं?
कभी कभी वह भी करना पड़ता है, लेकिन मजे की बात यह है कि पहले जब मैं बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ने जाती थी तो हम खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया जाता था। आज जब भी पंजाब में कोई बड़ा खेल होता है तो मैं अपने पुलिस दल के साथ खिलाड़ियों की सुरक्षा करती हूँ।
तो कैसा लगता है ये परिवर्तन? पुराने दिनों की याद तो आती होगी।
जी हाँ, याद आती है उन दिनों की जब कोई रोक टोक नहीं होती थी और मैं 15-20 किलोमीटर तक दौड़ लिया करती थी। कभी कभी तो इतनी घुटन होती है कि मैं फोन करके बहाना बना देती हूँ कि पेट में दर्द है, सिर में दर्द है या बुखार है, और दफ्तर जाती ही नहीं, बस छुट्टी लेकर दौड़ने चली जाती हूँ।
चोरी पकड़े जाने का डर नहीं लगता आपको?
लगता तो है, लेकिन मैं सावधान रहती हूँ। दौड़ लगाने ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ कोई पुलिस वाला न देखे। वैसे मेरे बॉस ने देख भी लिया तो कौन सा वो मुझे पकड़ पाएंगे।
हाँ, ये भी सही है, लेकिन बुसान के एशियाई खेलों में 1500 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद तो एक तरह से आपको पकड़ ही लिया गया था, और आप पर आरोप लगाया गया था कि आपने कोई वर्जित दवा ली थी। हालांकि बाद में वह आरोप गलत साबित हुआ था।
जी, जैसा कि आपने खुद कहा, आरोप एकदम झूठा साबित हुआ। यह कहा गया था कि मेरे खून में नैंड्रोलोन नाम की वर्जित दवा के अंश मिले थे। मैंने उन खेलों में 1500 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक ही नहीं, 5000 मीटर दौड़ का कांस्य पदक भी जीता था, और मेरे दोनों ही पदक छीन लिए गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो, खुशी के बजाय रोना आ रहा था।
लेकिन ये सब हुआ क्यों?
पता नहीं, एशियाई और ओलंपिक खेल समितियों का कहना है कि हजारों नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं, इसलिए कभी कभी असावधानी या तकनीकी कारणों से गलतियां भी हो जाती हैं। मेरे टेस्ट में ऐसी ही कोई गलती हो गई होगी।
आरोप झूठे साबित होने के बाद क्या हुआ?
खेल अधिकारियों ने माफी मांगते हुए मेरे पदक लौटा दिए।
चलिए, आपकी आगे की योजना क्या है? क्या कभी मैदान पर लौटेंगे?
यूं तो दौड़ना छोड़े कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी अगर 10-15 दिन दौड़ लगा लूं तो ऐसा लगता है वही पुराने दिन लौट आए हैं। इसलिए मुझे लगता है मैं अब भी भारत के लिए कुछ कर सकती हूं, और मैदान पर लौटने की योजना बना रही हूं।
सुनीता जी, मैदान पर वापसी के लिए शुभकामनाएं, और रेडियो चटनी के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं समीर साहनी। आज हमारी मेहमान है सुनीता रानी, जिन्होंने दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुए सन 2002 के एशियाई खेलों में 1500 मीटर की दौड़ का एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। सुनीता जी, रेडियो चटनी के सुनने वालों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले तो यही बताइए कि आप पुलिस की वर्दी में क्यों हैं?
क्योंकि मैं पंजाब पुलिस की नौकरी करती हूँ। जब मैं दौड़ती थी तब भी पंजाब पुलिस में थी, और अब तो दौड़ना भी छोड़ दिया है, इसलिए अब पुलिस अफसर बन गई हूँ।
यानी अब आप अपराधियों के पीछे दौड़ती हैं?
कभी कभी वह भी करना पड़ता है, लेकिन मजे की बात यह है कि पहले जब मैं बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ने जाती थी तो हम खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया जाता था। आज जब भी पंजाब में कोई बड़ा खेल होता है तो मैं अपने पुलिस दल के साथ खिलाड़ियों की सुरक्षा करती हूँ।
तो कैसा लगता है ये परिवर्तन? पुराने दिनों की याद तो आती होगी।
जी हाँ, याद आती है उन दिनों की जब कोई रोक टोक नहीं होती थी और मैं 15-20 किलोमीटर तक दौड़ लिया करती थी। कभी कभी तो इतनी घुटन होती है कि मैं फोन करके बहाना बना देती हूँ कि पेट में दर्द है, सिर में दर्द है या बुखार है, और दफ्तर जाती नहीं, बस छुट्टी लेकर दौड़ने चली जाती हूँ।
चोरी पकड़े जाने का डर नहीं लगता आपको?
लगता तो है, लेकिन मैं सावधान रहती हूँ। दौड़ लगाने ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ कोई पुलिस वाला न देखे। वैसे मेरे बॉस ने देख भी लिया तो कौन सा वो मुझे पकड़ पाएंगे।
हाँ, ये भी सही है, लेकिन बुसान के एशियाई खेलों में 1500 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद तो एक तरह से आपको पकड़ ही लिया गया था, और आप पर आरोप लगाया गया था कि आपने कोई वर्जित दवा ली थी, हालांकि बाद में वह आरोप गलत साबित हुआ था।
जी, जैसा कि आपने खुद कहा, आरोप एकदम झूठा साबित हुआ। यह कहा गया था कि मेरे खून में नैंड्रोलोन नाम की वर्जित दवा के अंश मिले थे। मैंने उन खेलों में 1500 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक ही नहीं, 5000 मीटर दौड़ का कांस्य पदक भी जीता था, और मेरे दोनों ही पदक छीन लिए गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो, खुशी के बजाय रोना आ रहा था।
लेकिन ये सब हुआ क्यों?
पता नहीं, एशियाई और ओलंपिक खेल समितियों का कहना है कि हजारों नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं, इसलिए कभी कभी असावधानी या तकनीकी कारणों से गलतियां भी हो जाती हैं। मेरे टेस्ट में ऐसी ही कोई गलती हो गई होगी।
आरोप झूठे साबित होने के बाद क्या हुआ?
खेल अधिकारियों ने माफी मांगते हुए मेरे पदक लौटा दिए।
चलिए, आपकी आगे की योजना क्या है? क्या कभी मैदान पर लौटेंगी?
यूं तो दौड़ना छोड़े कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी अगर 10-15 दिन दौड़ लगा लूं तो ऐसा लगता है वही पुराने दिन लौट आए हैं। इसलिए मुझे लगता है मैं अब भी भारत के लिए कुछ कर सकती हूं और मैदान पर लौटने की योजना बना रही हूं।
सुनीता जी, मैदान पर वापसी के लिए शुभकामनाएं, और रेडियो चटनी के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास 3, प्रश्न 13 से 18। प्रोफेसर मोहन कुमार एशियाई नींद अनुसंधान समिति के अध्यक्ष हैं। आकाशवाणी की विज्ञान संवाददाता नेहा वर्मा ने उनसे नींद और सपनों के बारे में हो रही नई खोजों पर बातचीत की। उनकी इस बातचीत को ध्यान से सुनिए और दिए गए प्रत्येक कथन को पढ़कर बताइए कि कथन सही है या गलत। अपना उत्तर उपयुक्त खाने में सही का निशान लगाकर दीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
प्रोफेसर मोहन कुमार, विज्ञान वार्ता में आपका स्वागत है।
धन्यवाद, और आपके सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
प्रोफेसर कुमार, सबसे पहले तो यही बताइए कि नींद का उद्देश्य क्या है। आम तौर पर यही माना जाता है कि जब शरीर को आराम की जरूरत पड़ती है, हमें नींद आने लगती है। क्या यह धारणा सही है?
कुछ हद तक, लेकिन जरा सोचिए कि अगर थकान उतारना ही नींद का उद्देश्य होता तो छोटे बच्चों को इतनी ज्यादा नींद क्यों आती और बूढ़ों को इतनी कम क्यों? जानवरों की मिसाल लें तो अजगर एक दिन में 18 घंटे क्यों सोते और जिराफ केवल 2 घंटे ही क्यों?
चलिए, तब आप ही बता दीजिए कि नींद क्यों आती है।
काश कि इसका जवाब इतना आसान होता। सच पूछें तो मेरी राय में तो नींद इसलिए आती है ताकि हम सपने देख सकें।
सपने देख सके? आप मजाक कर रहे हैं क्या?
बिल्कुल नहीं। हजारों व्यक्तियों पर किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला है कि सपने हमारे लिए नींद से कहीं ज्यादा आवश्यक हैं। इंसान नींद के बिना तो कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन अगर उसे सपने न देखने दिया जाए तो वह पागल होने लगता है।
लेकिन अगर आप सोएंगे ही नहीं तो सपने कैसे देखेंगे?
क्यों, इसमें क्या कठिनाई है? बहुत से लोग दिन में सपने देखते हैं। परीक्षणों के दौरान पाया गया है कि अगर किसी को कई दिनों तक न सोने दिया जाए तो वह बैठे ही बैठे सपने देखने लगता है।
उनींदे व्यक्ति का सोना तो समझ में आता है, लेकिन सपने देखने की बात समझ में नहीं आई।
इसे समझने के लिए ये समझना होगा कि नींद के दौरान क्या होता है। सोने के बाद धीरे धीरे हम गहरी नींद में उतर जाते हैं। घंटे भर तक गहरी नींद में रहने के बाद नींद का एक ऐसा दौर आता है जिसमें हमारी आंखों के कोए तेजी से दाएं बाएं घूमने लगते हैं और नसें तन जाती हैं। इसे रैपिड आई मूवमेंट या संक्षेप में REM नींद कहा जाता है। इसके दौरान हम सपनों की दुनिया में भटकने लगते हैं।
और रैम या सपनों की नींद का यह दौर कितनी देर चलता है?
लगभग आधे घंटे तक। हम औसतन 8 घंटे सोते हैं और इन 8 घंटों में REM यानी सपनों की नींद के लगभग 4 दौर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी को बार बार ठीक उस वक्त जगा दिया जाए जब वह सपने देखने लगे तो वह चिड़चिड़ा और पागल होने लगता है। यही नहीं, यदि किसी को हर रोज कुछ ही देर सोने दिया जाए तो वह गहरी नींद की बजाय सीधा सपनों की नींद के दौर में पहुंचने लगता है, मानो सपने देखने की भूख शांत कर रहा हो।
प्रोफेसर कुमार, चलिए मान लिया कि सपने देखना हमारे लिए सोने से कहीं ज्यादा आवश्यक है, लेकिन ऐसा क्यों है?
नींद वैज्ञानिक इसी गुत्थी को खोलने के प्रयास में लगे हैं। ऐसा लगता है कि सपने देखना हमारे दिमाग के लिए गहरी नींद से भी ज्यादा आवश्यक है। हम माता के गर्भ से ही सपने देखने लगते हैं, लेकिन विज्ञान के पास अभी इनके सारे रहस्यों की कुंजी नहीं है।
प्रोफेसर मोहन कुमार, विज्ञान वार्ता में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
प्रोफेसर मोहन कुमार, विज्ञान वार्ता में आपका स्वागत है।
धन्यवाद, और आपके सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
प्रोफेसर कुमार, सबसे पहले तो यही बताइए कि नींद का उद्देश्य क्या है। आम तौर पर यही माना जाता है कि जब शरीर को आराम की जरूरत पड़ती है, हमें नींद आने लगती है। क्या यह धारणा सही है?
कुछ हद तक, लेकिन जरा सोचिए कि अगर थकान उतारना ही नींद का उद्देश्य होता तो छोटे बच्चों को इतनी ज्यादा नींद क्यों आती और बूढ़ों को इतनी कम क्यों? जानवरों की मिसाल लें तो अजगर एक दिन में 18 घंटे क्यों सोते और जिराफ केवल 2 घंटे ही क्यों?
चलिए, तब आप ही बता दीजिए कि नींद क्यों आती है।
काश कि इसका जवाब इतना आसान होता। सच पूछें तो मेरी राय में तो नींद इसलिए आती है ताकि हम सपने देख सकें।
सपने देख सकें? आप मजाक कर रहे हैं क्या?
बिल्कुल नहीं। हजारों व्यक्तियों पर किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला है कि सपने हमारे लिए नींद से कहीं ज्यादा आवश्यक हैं। इंसान नींद के बिना तो कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन अगर उसे सपने न देखने दिया जाए तो वह पागल होने लगता है।
लेकिन अगर आप सोएंगे ही नहीं तो सपने कैसे देखेंगे?
क्यों, इसमें क्या कठिनाई है? बहुत से लोग दिन में सपने देखते हैं। परीक्षणों के दौरान पाया गया है कि अगर किसी को कई दिनों तक न सोने दिया जाए तो वह बैठे ही बैठे सपने देखने लगता है।
अनींदे व्यक्ति का सोना तो समझ में आता है, लेकिन सपने देखने की बात समझ में नहीं आई।
इसे समझने के लिए ये समझना होगा कि नींद के दौरान क्या होता है। सोने के बाद धीरे धीरे हम गहरी नींद में उतर जाते हैं। घंटे भर तक गहरी नींद में रहने के बाद नींद का एक ऐसा दौर आता है जिसमें हमारी आंखों के कोए तेजी से दाएं बाएं घूमने लगते हैं और नसें तन जाती हैं। इसे रैपिड आई मूवमेंट या संक्षेप में REM नींद कहा जाता है। इसके दौरान हम सपनों की दुनिया में भटकने लगते हैं।
और रैम या सपनों की नींद का यह दौर कितनी देर चलता है?
लगभग आधे घंटे तक। हम औसतन 8 घंटे सोते हैं और इन 8 घंटों में REM यानी सपनों की नींद के लगभग 4 दौर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी को बार बार ठीक उस वक्त जगा दिया जाए जब वह सपने देखने लगे तो वह चिड़चिड़ा और पागल होने लगता है। यही नहीं, यदि किसी को हर रोज कुछ ही देर सोने दिया जाए तो वह गहरी नींद की बजाय सीधा सपनों की नींद के दौर में पहुंचने लगता है, मानो सपने देखने की भूख शांत कर रहा हो।
प्रोफेसर कुमार, चलिए मान लिया कि सपने देखना हमारे लिए सोने से कहीं ज्यादा आवश्यक है, लेकिन ऐसा क्यों है?
नींद वैज्ञानिक इसी गुत्थी को खोलने के प्रयास में लगे हैं। ऐसा लगता है कि सपने देखना हमारे दिमाग के लिए गहरी नींद से भी ज्यादा आवश्यक है। हम माता के गर्भ से ही सपने देखने लगते हैं, लेकिन विज्ञान के पास अभी इनके सारे रहस्यों की कुंजी नहीं है।
प्रोफेसर मोहन कुमार, विज्ञान वार्ता में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभ्यास 4, प्रश्न 19 से 24। कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर इकबाल हसनैन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों पर बदलते मौसम और घटते जंगलों के प्रभावों का अध्ययन किया है। गंगा नदी पर उनकी एक वार्ता ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वार्ता आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
नमस्कार, मैं हूं सैयद इकबाल हसनैन। गंगा नदी उत्तरी भारत की रीढ़ के समान है। उत्तर और मध्य भारत के 45 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर हैं। हिमालय के गंगोत्री नाम के ग्लेशियर की एक बर्फीली गुफा से निकलकर लगभग 2,500 किलोमीटर का रास्ता तय करती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। हिमालय के और कई ग्लेशियरों से निकलने वाली सहायक नदियां भी गंगा में मिलती हैं, जिनमें यमुना, घाघरा और गंडक प्रमुख हैं। गंगा और उसकी अधिकतर सहायक नदियों का प्रमुख स्रोत हिमालय के ग्लेशियर और पहाड़ी ढालों से फूटने वाले हजारों झरने हैं, जिनसे 12 महीने पानी बहता रहता है। लेकिन पिछले 50 वर्षों से हिमालय की चोटियों पर हिमपात में कमी आती जा रही है और बर्फ की जगह पानी बरसने लगा है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघलने और छीजने लगे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वनों के काट दिए जाने और प्रदूषण के कारण, वायुमंडल में बढ़ती जा रही गर्मी के कारण हो रहा है। पिछली सदी के मध्य तक गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी, जो आज घटकर लगभग 28 किलोमीटर रह गई है। यह ग्लेशियर हर साल सैकड़ों मीटर घटता जा रहा है। नदियों को 12 महीने पानी देने वाले झरने भी सूख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के जंगल काट दिए गए हैं और बिना जंगलों की नंगी ढलाने बरसात के पानी को सोखकर उसे 12-मासी झरनों में नहीं बदल सकती। यही नहीं, नंगी ढलानों पर जब बरसात होती है तो पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। यही मिट्टी मैदानी भागों में नदियों को पाटकर उथला बनाती है। बरसात का पानी नदियों में नहीं समा पाता, मैदानों में फैल जाता है और हर साल बाढ़ का रूप ले लेता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ग्लेशियरों का घटना और जंगलों का कटना नहीं रुकता तो कुछ ही वर्षों के भीतर गंगा सूख भी सकती है। नमस्कार, मैं हूं सैयद इकबाल हसनैन। गंगा नदी उत्तरी भारत की रीढ़ के समान है। उत्तर और मध्य भारत के 45 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर हैं। हिमालय के गंगोत्री नाम के ग्लेशियर की एक बर्फीली गुफा से निकलकर लगभग 2,500 किलोमीटर का रास्ता तय करती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। हिमालय के और कई ग्लेशियरों से निकलने वाली सहायक नदियां भी गंगा में मिलती हैं, जिनमें यमुना, घाघरा और गंडक प्रमुख हैं। गंगा और उसकी अधिकतर सहायक नदियों का प्रमुख स्रोत हिमालय के ग्लेशियर और पहाड़ी ढालों से फूटने वाले हजारों झरने हैं, जिनसे 12 महीने पानी बहता रहता है। लेकिन पिछले 50 वर्षों से हिमालय की चोटियों पर हिमपात में कमी आती जा रही है और बर्फ की जगह पानी बरसने लगा है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघलने और छीजने लगे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वनों के काट दिए जाने और प्रदूषण के कारण, वायुमंडल में बढ़ती जा रही गर्मी के कारण हो रहा है। पिछली सदी के मध्य तक गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी, जो आज घटकर लगभग 28 किलोमीटर रह गई है। यह ग्लेशियर हर साल सैकड़ों मीटर घटता जा रहा है। नदियों को 12 महीने पानी देने वाले झरने भी सूख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के जंगल काट दिए गए हैं और बिना जंगलों की नंगी ढलाने बरसात के पानी को सोखकर उसे 12-मासी झरनों में नहीं बदल सकती। यही नहीं, नंगी ढलानों पर जब बरसात होती है तो पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। यही मिट्टी मैदानी भागों में नदियों को पाटकर उथला बनाती है। बरसात का पानी नदियों में नहीं समा पाता, मैदानों में फैल जाता है और हर साल बाढ़ का रूप ले लेता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ग्लेशियरों का घटना और जंगलों का कटना नहीं रुकता तो कुछ ही वर्षों के भीतर गंगा सूख भी सकती है।
This is the end of the test.